प्रेज लॉर्ड,
प्रभु को धन्यवाद हो। आज का संदेश है प्रभु की आज्ञा पूरी तरह न मानना। प्रभु की आज्ञा पूरी तरह न मानना, यह आज का संदेश का टाइटल है। हम मनुष्य हमेशा बातों को नहीं मानते, आज्ञाओं को नहीं मानते। हम मनुष्य जो हमारा परमेश्वर है उसके प्रति भी आज्ञाकारी हमेशा नहीं होते। घर पर भी हम हमारे जो माता पिता है उनके प्रति भी आज्ञाकारी नहीं होते। हम कभी कभी होते हैं, लेकिन अक्सर हम जो बच्चे हैं वो माता पिता के प्रति आज्ञाकारी नहीं होते। जहाँ हम जॉब करते हैं, काम करते हैं, वहाँ भी हम कभी कभी आज्ञाकारी नहीं होते। हम नहीं चाहते कि दूसरे जो लोग हैं वो हमें कंट्रोल करें, हमें चलाएं, ये कर वो करो या इसे अभी करो। इस तरह के जो आदेश है वो हम नहीं सुनना चाहते हैं। हम हुकुम नहीं सुनना चाहते हैं। हम अपनी जो ज़िंदगी है वो हम अपनी तरह से जीना चाहते हैं। मनुष्य ऐसा क्यों है? इसका मुख्य कारण है कि हमारे जो स्वभाव है, आम मनुष्य का स्वभाव एक पापी स्वभाव है। जो स्वभाव हमेशा आज्ञा के खिलाफ जाना चाहता है, प्रोटेस्ट करना चाहता है और आज्ञा को नहीं मानना चाहता है। हम पढ़ेंगे रोमियो का 8। उसका 5-8 तक इसमें लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। शारीरिक दशा में, इसका ये अर्थ ये है कि हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो नेचर है वो शारीरिक है, पापी है। इसलिए यहाँ लिखा है कि जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। लेकिन जब कोई इंसान नए सिरे से जन्म लेता है, आत्मिक तौर पे जीवन लेता है, यीशु मसीह को अपनाता है, तौबा कर लेता है, मन फिराता है, यीशु मसीह को अपने ज़िंदगी में आमंत्रित करता है, तब हमें एक नया स्वभाव हमें मिलता है, आत्मिक आध्यात्मिक आत्मा का स्वभाव हमें मिलता है। ये यह स्वभाव है आत्मिक स्वभाव या आत्मिक दशा, जिसे हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। इस दशा या इस स्वभाव से हम परमेश्वर के आदेश को मान सकते हैं। परमेश्वर हमेशा यह चाहता है कि हम उसे पूरी रीति से उनकी आज्ञाओं को माने, पूरी रीति से संपूर्ण तौर पर उनके जो आदेश हैं उनको हम माने, ताकि वो हमें आशीष दें। लेकिन अक्सर हम जो नए सिरे से भी जन्म होने के बाद भी काफ़ी जो मनुष्य है वो पूरी रीति से परमेश्वर को, परमेश्वर के जो आज्ञा हैं, आदेश हैं, उसको नहीं मानना चाहते। हम पढ़ेंगे पहला सैमुएल उसका 15 चैप्टर, पहला सैमुएल 15 1-3 पहले पढ़ेंगे, बाद में 7-9 पढ़ेंगे। पहला सैमुएल 15 चैप्टर 1-3। सैमुएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इज़राइल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है कि मुझे चेत आता है कि अमलेक ने इज़राइलियों से क्या किया, और जब इज़राइली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। इसलिए अब तू जाकर अमलेकियों को मार, और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए सत्यानाश कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पियो, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। 7-9 पढ़ेंगे। तब शाऊल ने हवीले से लेकर सूर तक जो मिस्र के सामने हैं अमलियों को मारा, और उनके राजा अगाग को जीवित पकड़ा, और उसकी सब प्रजा को तलवार से सत्यानाश कर डाला। परंतु अगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें सत्यानाश करना न चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसको उन्होंने सत्यानाश कर दिया। राजा शाऊल को परमेश्वर का आदेश सैमुएल की ओर से था कि उन्होंने जो अमलेकाइट्स इनका पूर्ण तरह से उन्हें नष्ट करना है, संपूर्ण तरह से उन्हें नष्ट मार डालना है, नष्ट करना है। लेकिन सवाल यह है कि क्या राजा शाऊल ने क्या परमेश्वर की ये जो आज्ञा थी उसका पालन किया? क्या राजा शाऊल ने इस आदेश, जो परमेश्वर की आदेश, को पूर्ण रीति से माना? नहीं, उन्होंने जो राजा आगाग और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरी पशुएं, जो सबसे अच्छा है, उसको उन्होंने नहीं मारा या उनका उनको नहीं नष्ट किया। हालांकि परमेश्वर का जो आदेश, जो हुक्म था कि हर एक जो चीज़ शत्रुओं का है, हर एक चीज़ को नष्ट करना है, लेकिन जो शाऊल था, उन्होंने परमेश्वर के जो आदेश है उनको माना है, लेकिन पूर्ण तरीके से नहीं माना। इसका पहला जो वजह हो सकता है वो है धोखाबाजी। जिस तरह से आदम और हव्वा ने बागे एदन में शैतान की बातों से धोखा खाया, उसी तरह से यहाँ शाऊल भी अपने जो मन में है धोखा खाकर परमेश्वर के हुक्म को पूरी रीति से नहीं माना, उसका पालन नहीं किया। आदम और हव्वा परमेश्वर के हुक्म को जानते थे, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि हम परमेश्वर से बेहतर हम जानते हैं, और इसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। शाऊल परमेश्वर की आज्ञा को जानता था, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं परमेश्वर से बेहतर मैं जानता हूँ, और इसका परिणाम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। हम भी जो परमेश्वर के जो लोग हैं, हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं, उनके हुक्म और आदेशों को जानते हैं, फिर भी हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर से अधिक जानते हैं। हम सोचते हैं कि शायद परमेश्वर हमारे जो गुनाह हैं उसको नज़रअंदाज करेगा। 13वें आयत में ये लिखा है, तब सैमुएल शाऊल के पास आया गया और शाऊल ने उसे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने तो यहोवा की आज्ञा पूरी की है। यहाँ हम पढ़ते हैं कि हालांकि शाऊल ने परमेश्वर की जो आदेश है, परमेश्वर का जो आज्ञा है, उसको पूरी रीति से नहीं माना, परंतु वो खुद कहता है कि मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। देखो, इस इंसान ने धोखा खाया है। ये खुद को सोचता है कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया है, और कहता भी है कि मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है, लेकिन हकीकत में उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को पूरी रीति से नहीं माना। 14वें आयत और 15वें, सैमुएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का यह मियमायाना और गाय बैलों का यह बहबाना जो मुझे सुनाई देता है, यह क्यों हो रहा है? शाऊल ने कहा, वे तो अमलियों के यहाँ से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है, और बाकी सबको तो हमने सत्यानाश कर दिया है। 18 से 21 पढ़ेंगे। और यहोवा ने तुझे यात्रा करने की आज्ञा दी और कहाँ जाकर उन पापी अमलियों को सत्यानाश कर, और जब तक वे मिट न जाएं तब तक उनसे लड़ता रहा। फिर तूने किस लिए यहोवा की बात टालकर लूट पर टूट के वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि से में बुरा है? शाऊल ने सैमुएल से कहा, निसंदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला और अमलियों के राजा को ले आया और अमलियों को सत्यानाश किया है, परंतु प्रजा के लोग टूट लूट में से भेड़ बकरियों और गाय बैलों अर्थात सत्यानाश होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने में ले आए हैं। हम भी जो परमेश्वर के लोग हैं, हम भी अक्सर परमेश्वर के वचन के खिलाफ होते हैं। अक्सर हम जिद्दी होते हैं, परमेश्वर के वचन को नज़रअंदाज करते हैं, और कभी कभी परमेश्वर के हुक्म आदेश जो हैं, परमेश्वर के वचन जो हैं, उनको भागों में मानते हैं, पूरी रीति से नहीं मानते। हमारे पास भी काफ़ी ऐसे वजह हैं, और हमारे जो मनुष्य का जो सोच है, हम काफ़ी वजह दे सकते हैं कि हमने क्यों परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं माना। जब आदेश है कि हुक्म है कि चोरी नहीं करना, हम चोरी करते हैं और बाद में उसका हम वजह देते हैं कि हमारा जो जहां हम जॉब करते हैं, जहां हम नौकरी करते हैं, वो तो काफ़ी पैसे वाला मनुष्य है, तो थोड़ा सा जो चोरी है, थोड़ी सी जो चोरी है, उस पर कोई असर नहीं डालेगी, तो ये सोचकर हम चोरी करते हैं। जब हुक्म है कि जो सप्त का दिन है, जो परमेश्वर का दिन है, उसको पाक माना जाए, चर्च में आना है उस दिन, जो एक दिन परमेश्वर ने कहा है कि 6 दिन काम किया जाए और 1 दिन मेरे लिए रखा जाए, तो हम चर्च नहीं आने का कारण हम बताते हैं कि हम क्या वजह है कि हम चर्च नहीं आ सकते। हमें काम है, हमारे पास पार्ट टाइम जॉब्स हैं, इसलिए हम चर्च को नहीं आते, इसलिए चर्च को नहीं आ पाते। हम बीमार हैं, इसलिए हम चर्च को नहीं आ पाते। हमारे पास टैक्सी के लिए पैसे नहीं, हमारे पास ट्रांसपोर्ट के लिए पैसे नहीं, इसलिए हम चर्च नहीं आ पाते। आज हमारे घर में मेहमान आए हैं, इसलिए हम चर्च नहीं आ पाते। जिस तरह से राजा साउल अपने जो कार्य है, अपने जो उन्होंने जो किया, उसका वजह बताने के लिए जिस तरह से वो कहता है, उसी तरह से हम भी अपने जो गुनाह हैं, अपने जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं पूरी रीति से रखना के लिए जो हम वजह बताते हैं, उसी तरह से राजा सॉल ने सैमुएल से कहा कि हमने जो अच्छे अच्छे जो भेड़ बकरियां रखी हैं, वो परमेश्वर की कुर्बानी के लिए रखी हैं। तो परमेश्वर तो सैमुअल के जवाब में क्या कहता है, 22वें आयत में सैमुअल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेड़ों की चर्बी से उत्तम है। हम कभी कभी सोचते हैं कि जब तक हम हमारा जो दसवां हिस्सा है हम कलीसिया को देते हैं तब तक हम कलीसिया में हर हफ्ते आने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सोचते हैं कि हम अगर हम पास्टर को पैसे देंगे और उसको खुश करेंगे तो कलीसिया के प्रति हम पूर्ण रीति से हमें समर्पण करना ज़रूरी नहीं। हम चाहे तो बड़े बड़े दान हम कलीसिया बनाने के लिए दे सकते हैं, जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए मदद के लिए हम पैसे दे सकते हैं, लेकिन ये तब तो ठीक है, लेकिन हमारे पास ये पैसा कहाँ से आया वो आप पूछो नहीं। यहाँ लिखा है कि मानना तो बलि चढ़ाने से और उत्तम है। हुक्म को मानना ये कुर्बानी से बेहतर है। ये पहला वजह है, हमने अभी बताया कि जब हम परमेश्वर की जो कलाम है, परमेश्वर की आदेश है, उसको पूरी पूर्ण रीति से नहीं मानते वो है हम धोखा खाते हैं। ये दूसरा जो रीज़न है, दूसरा जो वजह है, जब हम परमेश्वर के जो आदेश है उसको पूर्ण रीति से नहीं मानते वो है लोगों का डर। 24वें वचन में पढ़ेंगे, शाऊल ने सैमुअल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। कभी कभी हम भी भयभीत होते हैं, डर जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में। हमारे जो माता पिता हैं वो हमारे बारे में क्या कहेंगे, हमारे जो अच्छे दोस्त हैं वो हमारे बारे में क्या करेंगे, क्या कहेंगे। हम यहाँ आते हैं कलीसिया में और सच को सुनते हैं और यह एहसास यकीन होता है कि ये जो सच है, जो कलीसिया का जो सीख है वो सच है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है। और हो सकता है कि हम पाकिस्तान के हों या इंडिया के हों या श्रीलंका के हों और हमारे गांव में भी कलीसिया हैं, जो रीति रिवाज ही कलीसिया है। हमने यहाँ आकर सच्चाई को जाना लेकिन फिर भी लोगों का डर के वजह से जब हम इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका जाते हैं, वहाँ जाकर उसी रीति रिवाज का जो कलीसिया है उसी में हम जाते हैं, क्योंकि हमें लोगों का डर होता है। हमें पता है कि मूर्ति पूजा गलत है, फिर भी हम इन चर्चेस में जाते हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे अगर हम नहीं गए तो। छोटे बच्चों का बपतिस्मा हम जानते हैं ये वो गलत है, लेकिन फिर भी ये डर है कि हमारे जो बीवियां हैं, पत्नियां हैं, वो क्या कहेंगी, हमारे माता पिता क्या कहेंगे, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे अगर हमने छोटे बच्चों को बपटिज्म नहीं किया। हमें डर लगता है कि हमने नए सिरे से हम पैदा हो चुके हैं। हमें डर लगता है ये बताने के लिए कि हम पानी का बपटिस्मा लिया है, क्योंकि हम लोगों से डरते हैं। परमेश्वर कहता है कि हमने अविश्वासियों के साथ रिश्ता नहीं बनाना, अविश्वासियों के साथ शादी के बंधन में नहीं जुड़ना, लेकिन फिर भी हम जुड़ते हैं। और इतना कि हम हमारे बच्चों को भी हम अविश्वासियों के बंधन में बनने के लिए मजबूर करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि ये हमारा रीति रिवाज है। हम किस तरह से हम इस हमारे जो रीति रिवाज को हम छोड़ सकते हैं? क्यों? क्योंकि हम लोगों को डरते हैं। लोगों का डर कि लोग क्या कहेंगे। और ये जो वजह राजा साउल का भी था, जिस तरह से हमने पढ़ा 24वीं आयत में, साउल ने सैमुअल से कहा, मैंने तो पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। उसी तरह से जिस तरह से हम करते हैं। लेकिन मत्ती 10, प्रभु यीशु क्या कहता है, मत्ती 10 27 और 28, मत्ती 10 27 और 28 में ये लिखा है, जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे होंठों पर से प्रचार करो। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। तो हमें लोगों से नहीं डरना, परंतु परमेश्वर से डरना है। परमेश्वर के जो आदेश हुक्म है उसे मानना जरूरी है। जो तीसरा जो कारण है कि हम परमेश्वर के आदेशों को नहीं पूरी रीति से मानते, वो है लालच। क्रिया या प्रेरितों के काम, उसका चैप्टर 4 32 से पढ़ेंगे हम, और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित और एक मन के थे, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ सांझे का था। और प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था, और उनमें कोई भी दरिद्र न था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लगाते और उसे प्रेरितों के पांवों पर रखते थे, और जैसे जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया जा करते थे। और यूसुफ नाम क्रूपस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों के ने बरबनास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपये लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिए। पांचवा चैप्टर हम पढ़ेंगे 1 से 5 तक। और एनिनिया नाम का एक मनुष्य और जिसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी की भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। परंतु पत्रस ने कहा, हे हनिनिया, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही, क्या तेरी न थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। ये बातें सुनते ही हनिन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वाले पर बड़ा भय छा गया। ये जो वजह थी कि हनिन्याह और सफीरा ने ये कार्य किया है, लालच। सभी लोग ने अपने अपने जो संपत्ति थी वो बेच बेच कर जो यीशु मसीह के जो चेले थे उनके चरणों में लेकर आए थे। तो हनिन्याह और सफीरा ने भी ये बहाना किया कि हम भी उसी तरह से कर रहे हैं, हमने भी अपना जो संपत्ति है उसको बेचकर उनके चरणों में रख छोड़ा है। हालांकि हकीकत में पूरा जो दाम था उसमें से थोड़ा रख कर बाकी का उनके चरणों में लेकर आए। इसका जो वजह कि परमेश्वर की आज्ञा को पूरी रीति से न मानना था, कि लालच। हम पैसे को इतना हम मोहब्बत करते हैं पैसों से कि हम प्रभु के बातों को नहीं मानते। लालच से हम इतने मोहब्बत रखते हैं कि हम प्रभु के बातों को नहीं मानते। हम फिर से एक सैमुएल 15:23 पढ़ेंगे। कि सैमुएल क्या कहता है शाऊल से, तेईसवें आयत में, देख बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना कि ये समान पाप है, और हट करना मूर्तों और गद्देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। जिस तरह से शाऊल को परमेश्वर ने ठुकराया राजा होने से, उसी तरह से हो सकता है कि हम भी परमेश्वर से ठुकराए गए हो। अगर हम नहीं चाहते कि परमेश्वर हमें ठुकराए, जरूरी है कि हमें परमेश्वर के आदेशों को पूरी रीति से मानना। जो 10वां हिस्सा देना है वो उसमें पूरी रीति से हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना जरूरी है। जो कलीसिया में हर हफ्ते आना है टाइम पर और हर हफ्ते, उसमें भी हमें पूरी रीति से परमेश्वर के आज्ञा को मानना है। बाकी के जो हुक्म आदेश हैं उसी पूरी रीति से मानना जरूरी है। जिस तरह से जो इजरायली लोग थे जब मिस्र से परमेश्वर ने उन्हें बाहर निकाला और रेगिस्तान में 40 बरस वो चलते रहे, और उस रेगिस्तान में रात के समय काफ़ी ठंड और दिन के समय काफ़ी गर्मी होती थी, तो परमेश्वर उनको दिन में बादल उन पर लग रहा था, जिससे उनको सूरज की गर्मी से उन्हें मदद मिलती, और रात को एक आग का बादल उन पर लेकर आता, जिससे उन्हें रोशनी और गर्मी मिलती। जब जब वो बादल आगे निकल जाता तो वो लोग उससे पीछे पीछे चले जाते। जब वो बादल रुक जाता, लोग रुक जाते। वो जानते थे कि अगर वो बादल से अगर हटें और निकल जाएं दूर रेगिस्तान की जो गर्मी और ठंडी है, उससे उनकी जान चली जा सकती थी। इसलिए जब बादल आगे निकल जाता तो लोग भी बादल के पीछे पीछे चले जाते हैं और बादल के नीचे आ जाते हैं। तो हमें भी इसी तरह से, हमें अगर परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर की बरकत और परमेश्वर की ब्लेसिंग्स अगर हमें मिलनी है, तो परमेश्वर का जो हुक्म है, आदेश है, जो वचन है, उसको पूरी रीति से हमें मानना ज़रूरी है। अगर हम नहीं करते तो दुख, दर्द, परेशानी, उदासी हमेशा हमारी ज़िंदगी में रहेगी। परमेश्वर दयालु है और वो ये चाहता है कि हम सब उसके बच्चे हैं, उसे पूरी रीति से उन्हें माने, लोगों का डर हटाकर, अपने जो वजह हैं उसको हटाकर, लालच है उसको दूर रखकर, पूरी रीति से परमेश्वर के पीछे होकर परमेश्वर की बातों को मानना। हम अभी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम शुक्र करते हैं आपको, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये मौका दिया कि आपका जो वचन है उसको सुने, हमारी ज़िंदगी को जांचें कि क्या हम सौल की तरह हैं या फिर हम प्रभु यीशु की तरह हैं। सौल जो परमेश्वर के हुक्म आदेश को जानते हुए भी पूरी रीति से परमेश्वर के आदेश को नहीं माना, और आखिरकार परमेश्वर ने उन्हें राजा होने से टुकराया। हे परमेश्वर, हे प्रभु यीशु, हमें आपके जैसे बनाओ, न कि राजा साउल की तरह, जो हमारे रीजनिंग से, जो हम वजह देते हैं। मदद करें प्रभु कि हम वो वजह न दे पाएं, और आपको जो हुक्म आदेश है उसकी पूरी रीति से हम मान सकें, ताकि हमेशा आपका जो हाथ है वो हमारे सर पर हो, आशीष हमारे घर पर हो, ज़िंदगी में हो। मदद करें प्रभु, जो लोगों का डर है उसको अलग रख कर आपके पीछे हमें मजबूती से चलने के लिए हमें मदद कीजिए। हमें आपको, आपका जो डर है हमारी ज़िंदगी में हो, न कि लोगों का डर, धोखाबाजी हमारी ज़िंदगी में न हो। शैतान जो धोखा देना चाहता है लोगों को, उसे हमें दूर रखो प्रभु, ताकि हम न धोखा खाएं और बल्कि आपके जो आदेश है उसको पूरी रीति से कर पाएं। लोगों का डर अलग रखें प्रभु हमारी ज़िंदगी से, ताकि हम आपके जो हुक्म है उसको पूरी रीति से कर पाएं। लालच हमारी ज़िंदगी से अलग रखिए प्रभु, ताकि हम आपके जो हुक्म है उसको पूरी रीति से कर पाएं। प्रभु आप महान हैं, दयालु हैं, क्षमा करें प्रभु, और आगे हमारी ज़िंदगी में और भी मदद करें प्रभु, ताकि हम हमेशा आपके पीछे चलें, आपके नाम गुनगाएं और आपकी आशीष हमारे हमारी ज़िंदगी में हो। ये जो प्रार्थना है हम प्रभु यीशु के नाम करते हैं, आमेन।